कीजिए, अभी तुमको काट देंगे। कहा जैसे हमारे ऊपर में आप लोग वृथा नाराज है, आप देखिए हमने समय दिया था 4 बजे, अपनी घड़ी देखिए तो सब ने देखा तो 4 ही बजा है। अरे यदि जादूगर ऐसा कर सकता है, जादूगरों के जादूगर के जादूगर के ये जो गोविंद जी बैठे हैं और ये मर जाएंगे, इनके परिकर लोग मर जाएंगे, इसलिए सोचो ये ऐसे हमारे उपास्य हैं। कैसे उपास्य? ब्रज में मक्खन की चोरी करते समय में कहा जी क्यों चोरी करता है, किस प्रकार से देखा जी कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध दिया और रो रहे हैं और लठिया उठाकर कह रही है मारूं मारूं।
नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदाथियोलुखला धावमानम परामृष्टमत्यंत तदृत्य गोप्ता।
यशोदा माँ जी उनको खदेड़ रही हैं, वो भाग रहे हैं कि मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार।
वो परब्रह्म यहाँ ब्रज में ऐसी लीलाएं,
इसको माधुर्य लीला कहते हैं। द्वारका इत्यादि में ऐश्वर्य लीलाएं होती हैं, ब्रज में ऐश्वर्य भी माधुर्य के द्वारा परिमंडित एकदम छिपा हुआ रहता है, ऐसे ये हैं। तो यहां पर कृष्ण की लीला जब अंतर ध्यान हो गई, कली जी का आरंभ हो गया, परीक्षित ने उसको मारा नहीं, किस लिए नहीं मारा? कली में बहुत से दुर्गुण है, ये ठीक है, बहुत से दुर्गुण है, दोषों का भंडार है, इसमें केवल एक गुण है, स्त्रियां पति को नहीं मानेंगी, पति स्त्रियों को नहीं मानेंगे, बेटा बाप की सेवा नहीं करेगा। अभी कलयुग में 5000 वर्ष बीतने पर ये स्थिति है, न जाने पीछे क्या होगा। और सब देशों में अभी वहां की हवा आ रही है, वहां का पति को डाइवोर्स कर देना, स्त्री को डाइवोर्स करना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, भारतवर्ष में ही कुछ मानी जाती है। वहां पर एक दिन में 10-5 बार पति बदल दिए जा सकते हैं, वो एक साधारण सी बात है, और बातों की तो बात ही क्या है। कैनेडी हमारे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी स्त्री ने 45वां शादी की थी, 45वें पति को बदल दिया। जैसे कपड़े बदलते हैं, ये कोई समस्या नहीं है, और दिनों में आएगा जब अपने बेटे को भी काट करके लोग खाएंगे, पति की सेवा की तो बात ही क्या है, धर्म नहीं रह जाएगा उस तरह से, ये कलयुग है तो आया। किंतु इसमें एक गुण है क्या, जैसे तैसे भी भगवान का नाम निकल जाए बस कल्याण हो जाएगा। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हेलियाबा भृगुबर नरमात्रम तारी। चाहे श्रद्धा से हो, चाहे इस रूप में भी अश्रद्धा से हो, और की तो बात क्या, अपनी अपने कुत्ते का नाम भी यदि गोविंद माधव मुरारी या कुछ रह दिया, अपने बेटे बेटी का नाम, आज तो कलयुग में बेटे बेटियों का नाम वो माधवी रुक्मिणी सत्यभामा सीता नहीं रखते, राधा नहीं रखते, अब क्या रखते हैं, ऐसी तलूलूल जुलूल जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे सब नाम रखते हैं, बेटों का नाम ऐसा रखते हैं, अच्छा नाम नहीं रखेंगे। हमने कहा जी मुरारी राम रखो, मुरारी नहीं रखो, हाँ चिंटू पिंटू झंटू खुंटू मंटू ऐसे सब नाम रखते हैं। पहले भगवान का नाम करने से तो हो जाता है, और अब पिंटू झिंटू संटू फंटू में क्या होता है, और ये यही सब राम सब। अभी सुना है जब अमेरिका में वहां के प्रेसिडेंट ने नाम अपने कुत्ते का नाम रखा है इंडिया, कुत्ते का नाम या किसका नाम, इंडिया रखा है ना, तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही रखेंगे, ऐसा मत रखो हमारी प्राचीन संस्कृति को मत भूलो। लड़कों का नाम गोविंद दास, मुरारी मोहन, राधा रमन, राधा कांत, ये सब रखो। अरे नहीं होता तो श्री राम रखो, ऐसे सब नाम रखो जो लेने से ही उद्धार हो जाए। भगवान के लिए नहीं होने से भी एक सुअर को देखने से हा राम यदि मुख से निकलता है तो वो भगवान लेते हैं क्या? हा राम, और तुरंत उसकी मुक्ति हो जाती है। और प्रेम से लेगा, प्रेम से गोविंद जी का दर्शन करेगा, और प्रेम से यदि कीर्तन करेगा तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है एक नाम के आधार पर। कलयुग केवल नाम आधारा, बस नाम लीजिए कलयुग में, और कुछ भी कीजिए, अर्चन पूजन जो कुछ भी कीजिए, किंतु भगवान का नाम लीजिए। श्रद्धा से हो, अश्रद्धा से हो, जैसे भी हो, गोविंद का नाम निकला बस कल्याण ही कल्याण है। यदि प्रेम से निकला तो गोकुल वृंदावन में जन्म होगा, गोपियों के गर्भ से और कृष्ण के लीला के परिकर में जाकर के उसका रस स्वादन करेंगे, ये जगत का ये नहीं रह जाएगा। और यदि उतना प्रेम नहीं हुआ तो अंततः मुक्ति तो हो ही जाएगी, और दूसरे जन्म में मुक्त होकर के कहीं ब्रजवास के अंदर में निकट में या कहीं भी भक्त परिवार में जन्म होगा। श्रीमताम सूची नाम, किसी अच्छे परिवार में जो मध्यम का है, भूखो नहीं मर रहा, धनी भी अधिक नहीं है, ये दोनों भगवान का भजन नहीं करते, जिनको रूप का गौरव है, जन्म का गौरव है, विद्या का गौरव है, ऐसे लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। अत्यंत रूपसी कोई लड़की होगी, कोई रूपवान लड़का होगा, खूब विद्वान होगा, रूपवान होगा, और बस अधिक से अधिक यदि धन उसको यदि हो गया तो क्या होगा? वो भगवान का भजन किसी हालत में नहीं कर सकता। इसके उदाहरण लाखों हैं। यहाँ पर जितने लोग आते हैं ये मध्यम श्रेणी के होंगे, न अधिक धनी न अधिक गरीब। इन लोगों को भगवान सुजोग देते हैं, ये लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। नल कुबेर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर जी के पुत्र क्या करते? दारू पीते हैं, स्त्रियों के साथ में रमण करते हैं, कोई लोक लज्जा नहीं है। नारद जी ने अभिसंपात दिया, जाओ स्थावर बन करके वृक्ष बन करके बैठे। इन लोगों का भजन करना बड़ा कठिन है, जिनका हो गया ये समझिए पूर्व जन्म का संस्कार है, जो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी भगवान का नाम करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए यदि प्रेम के साथ में जो करता है तो उसकी बात ही क्या। अवहेला करके भी अजामिल ने अपने बेटे के लिए नारायण नाम किया, भगवान को नहीं बुलाया, नारायण नारायण मर रहा है इसने में जमदूत आए, और देख करके डर गया, निकल गया नारायण नारायण नाम, और भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, अपने चार दूतों को भेजा जो उसके गुरु बने, और फिर वो मृत्यु से निकल करके हरिद्वार में गया और वहां पर उसने आराधना करने लगा नारायण। अब प्रेम के साथ में किया, अब भगवान को वही दूत आए और उसको लेकर के चले गए। इसे लाखों लाखों सब उदाहरण है। इसलिए आप लोग आज भगवान का कीर्तन कीजिए। कल से मैं श्रीमद् भागवत की कथा को बहुत ही सुंदर सूचीपूर्ण है, हमारे आनंद वृंदावन चंपू में, गोपाल चंपू में, श्रीमद् भागवत में, इधर से उधर से जितनी भी कथाएं हैं, रोचक सब कथाएं हैं, उन रोचक कथाओं के साथ में आपको सुनाने की मैं चेष्टा करूंगा, और आप लोगों का कल्याण हो।
माधवासम प्राप्तो जस्य प्रथिति कृपया गुरुं तं नतोऽस्मि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरव्यक्तिहे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणं कृते।
हमने कल श्री गोविंद जी का प्राकट्य के संबंध में वृंदावन से लेकर और अभी तक का इतिहास हमने बतलाया। गोपीनाथ गौड़ीय गोपीनाथ मंदिर में भी मैंने गोपीनाथ के प्राकट्य के संबंध में बतलाया। मैंने ये विशेष जोर देकर बतलाया कि ठाकुर जी की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति न समझा जाए, लकड़ी की मूर्ति न समझा जाए या धातु की मूर्ति न समझा जाए, और इसको न समझा जाए कि राज यहाँ के जयपुर के कारीगरों ने या वहाँ के कारीगरों ने इनको अपने हाथ से गढ़ा और औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया। इसके संबंध में हमने बहुत कुछ बतलाया था। ठाकुर जी तो चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, भक्तों से बात करते हैं, उनको खाने की जरूरत होगी तो वो बतला देंगे, भूख लगेगी तो बतला देंगे, जैसे बच्चे बतलाते हैं। साधारण रूप में ये गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन ये बच्चे जैसे हैं, अपनी सेवा लेने के लिए बोलते नहीं हैं, नहीं तो भक्तों से तो बोलते हैं जो उनका स्वरूप जानते हैं, नहीं तो यदि वो बातचीत करने लगे तो कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, इसलिए अचल मूर्ति के रूप में वो हैं। हमने सुना है कि जिस समय ठाकुर जी की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई तो यहाँ के रानी ने सोचा हमारे नाक का बेसर बहुत कीमती है, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, मैं ठाकुर जी को पहनाऊंगी, किंतु सोचा पहनाऊंगा कैसे, नाक में तो छेद होंगे नहीं और ये तो संभव पर नहीं है। अब बड़ी कुछ चिंतित हो गई और झपकी लग गई। सवेरे तो उन्होंने देखा गोविंद जी उनके पास में आए, बोले अरे मेरे नाक में मेरी मैया जसोदा जी ने छेद कर रखा है, तुम पहनाना चाहती है तो आ करके पहना लो। सवेरे आई और देखी जो सचमुच में उनके नाक में छेद है। फिर उन्होंने उस बेसर को स्वर्णकारों से निर्मल फिर बनाकर और अपने हाथों से उनको पहना दिया। आप लोग जानते होंगे सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने रोज जाते थे, रोज प्रतिदिन गोवर्धन से चल वृंदावन से जाते, 14 मील गोवर्धन में जाते और 14 मील की परिक्रमा करके फिर 14 मील चल करके मथुरा में माधुकरी करते और माधुकरी करके तब फिर वृंदावन में पहुँचते, फिर सवेरे चले जाते। उनका प्रतिदिन का ये नियम था। वहाँ पर वृंदावन में मथुरा में माधुकरी करने गए थे, चौबाइन के घर में देखा दो लड़के परस्पर लड़ रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और एक श्याम रंग का लड़का और एक गौर वर्ण का लड़का उस चौबाइन का लड़का, वो लड़के के साथ में उसके लड़के साथ में गिल्ली डंडा खेलते। कृष्ण ने उनको जब जीत लिया तो उसके कंधे पर चढ़ गए और जब कृष्ण हार गए वो जीत गया तो जल्दी से भाग करके मंदिर में घुस गए और वो डंडा लेकर के कहा अच्छा तू भाग करके देखें कहाँ चढ़ जाएगा तुम,
वो मंदिर में घुसने लगा उनको पकड़ने के लिए, जैसे अब तुम्हारे कंधे पर चढ़ूंगा, तो वो भीतर में चले गए ठाकुर जी और मूर्ति बन करके खड़े हो गए। पुजारी ने या मर खबरदार मत आना, उसको झड़ा। अच्छा तो तुम कल आएगा ना तो हम देख लेंगे। दूसरे दिन दोनों बच्चे रो रहे थे खाने के लिए और मैया क्या कर रही, अभी अभी नींद से उठी और कपड़े नहीं बदले हैं, दातन कर रही थी और खिचड़ी चढ़ा दिया। और खिचड़ी जब पकने लगी तो दातुन से इधर से तो दातन करती है और पीछे से उसको चलाने लगी। और उसी समय में सनातन गोस्वामी पहुँचे और उन दोनों बच्चों को इसके बाद में खिचड़ी उतार करके बच्चों को परस दिया, तब स्नान करने मुख धोने के लिए चली गई। जब आई तो उन्होंने कहा जैसे देखो ये तुम्हारे लड़के और ये जो है वो साधारण नहीं है, और तुम उनको जूठा, इससे इधर से दातुन का रस निकलता है तुम्हारे मुख का और उसे खिचड़ी चलाती है और उससे तुम उनको खिलाती है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत पाप लगेगा। अच्छा रे बाबा तुमने अच्छा किया हमको समझा दिया, नहीं तो मैं रोज ही ऐसा करती थी। अच्छा दूसरे दिन वो यमुना स्नान करने चली गई और बच्चे दोनों रो रहे, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी। गोपाल को भी भूख लग गई, मदन गोपाल को, उसके बच्चे को भी रोने लगे। सनातन गोस्वामी ने देखा जी ये तो हमारे प्रभु भी रो रहे हैं, उसका बच्चा भी रो रहा है। ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़े। जब आई मैया ऐसा मत करो, तुम जैसे करती थी पहले वैसे ही करो, यदि इसी में जूठा खाने में ही इनको आनंद है तो कोई कहने की बात नहीं है, तुम ऐसे प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। सनातन गोस्वामी जब दूसरे दिन आए तो मदन गोपाल जी ने कहा मैं तेरे साथ में चलूंगा वृंदावन में रहूंगा और मुझे अच्छा यहाँ नहीं लगता, मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उन्होंने कहा जी मैं कैसे आपको ले कर सकता हूँ, मैं नहीं ले जा सकता, जो सोदा मैया की 9 लाख गायें उसे तुम्हारा पेट नहीं भरा, दूसरों के घरों में तुम मक्खन चोरी करता था, फिर तुम दूध पीने के लिए यशोदा जी का दूध केवल तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ा, तो तुम एक वर्ष तक गये के बछड़े लाखों बछड़े होकर के दूध पिया तो भी पेट नहीं भरा, तो लाखों गोपियों के तुम बेटे बने और एक वर्ष तक छप करके तुमने पिया और यशोदा मैया और ये सब लोग मिल करके तुम्हारा भोग को बंद नहीं कर सके, पेट नहीं भर सके, तो मैं कैसे भर सकूंगा, मेरे लिए संभव नहीं। हम तो माधुरी करते हैं, सूखी रोटी का टुकड़ा वो भी बिना नमक का लेते हैं, तुम कैसे खाएगा। तो बाबा मैं देख लूँगा, मैं खा लूँगा, तुम इसके लिए चिंता मत करो, तुम हमको ले चलो। अरे मैं कैसे ले चलूँ, तो क्या चलो पीछे पीछे, तो मैं कैसे मूर्ति कैसे पत्थर की चलेगी, अरे पत्थर की मूर्ति कभी बात करती है क्योंकि चलेगा नहीं, तो तुम चलो। तो मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा तो चलो मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो तुम आएगा कि नहीं, ग्वारिया तो है वो आएगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं, नहीं हमारे चरण का मिश्र बजेगा सुन करके चल। चलते 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 जबकि वृंदावन में कौन थे, मदन थे, मैं कहीं थे यमुना के किनारे, उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके वहीं पर खड़े होकर के पत्थर की मूर्ति बन गई, वहीं पर उनको स्थापन किया। ठाकुर जी ने अपनी सारी व्यवस्था कर, इसकी बहुत लंबी कहानी है जिसमें मैं नहीं जानी हूँ, मैं अपना आरंभ करूँ तो ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा मत सोचना, ये ठाकुर जी बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं, बोलते हैं फिर बोलेंगे ठीक से, ऐसा ही भक्त है। भक्तों की हम उनकी भूख लगती है, यशोदा मैया के घर में उनको भूख लगेगी। अक्रूर उद्धव इन लोगों के घर में भूख नहीं लगेगी, दुर्योधन के घर में इनको भूख नहीं लगती। और भक्तों की हाथ छीना झपटी करके खाते हैं, चोरी करके खाते हैं, कई ऐसे ये ठाकुर हैं बड़े रंगीले हैं। यहाँ से गोस्वामी जी जो सेवायत हैं वो कल कह रहे थे मुझे हमारी बातों को सबको उन्होंने प्रवचन को सुना बड़ी प्रसन्न हुए। कह रहे थे ये उनके पिताजी जब तक दिन में गोस्वामी थे तो कुछ लोगों ने आकर के उनसे कहा देखो विश्व में सबसे धनी मंदिर है वेंकटेश जी का मंदिर दक्षिण में, लाखों रुपयों का करोड़ों रुपयों का चढ़ावा तो रोज आता है और उससे सामाजिक कार्य होता है। ठाकुर जी के सामने क्या होता है सामाजिक कार्य होता है और जिसमें नाश्ते भी पैदा होते हैं बड़े बड़े अस्पताल है तो
भगवान अनंत है पूर्ण है पूर्ण माने अनंत है
किया गया।